नमस्ते सोतो छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। बेटियों की पढ़ाई इसी में सबकी भलाई, इस विषय को लेकर कई धारणाएं बनी हुई हैं। कई रूढ़िवादी परंपराओं के द्वारा बेटियों की पढ़ाई अधूरे में छूट जाती है, और इन्हीं विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में संदीप जी भकने जुड़े हुए। संदीप जी, मोबाइल वाणी पर स्वागत सर आपका।
धन्यवाद। नमस्कार योगेश जी।
सर, क्या बेटियों की पढ़ाई बेटों की बराबरी में क्यों नहीं हो पा रही है? क्या क्या समस्या आ रही है?
आज नवरात्र का समय चल रहा है
जी
और हम एक माता स्वरूपिणी और एक कन्या और महिलाओं का पूजन इस देश में किस तरह से होता है, और ये हमारे संस्कृति की अद्वितीय परंपरा भी रही है कि हम लोगों ने महिलाओं को प्रथम पंक्ति में रखा है और उनको सम्मान पूर्वक पूजा जाता है। 9 दिन हम लोग उपासना करके ये सिद्ध होता है कि कन्या या महिला की पूजन किया जाना चाहिए, इसलिए आज कन्या पूजन का भी दिन है। आज समय की मांग भी है और इसके पूर्व भी महिलाओं का सम्मान और एक महिला की अग्रणी भूमिका होती थी। कन्याओं का या लड़कियों का शिक्षा के क्षेत्र में आज उनको महिला और पुरुष के बराबर का दर्जा दिया जाना, इसलिए भी आज समय की मांग है और पूरा विश्व इस बात का प्रयास कर रही है कि कैसे पुरुष और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए, उसको शिक्षा के क्षेत्र में उसको शिक्षित करके कैसे सारे क्षेत्रों में उसको अग्रणी बनाया जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। और आज हर जगह हमारे देश में भी बच्चियों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, हर क्षेत्र में उनके लिए एक आरक्षण की स्थिति बनाई है कि आधी 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 सीटें महिला तो आधी सीटें पुरुषों के लिए भी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, ये सारी व्यवस्था हमारी सरकार और हम सब लोगों का प्रयास है। और इसमें और अच्छा प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए, क्योंकि कन्या लड़की जो होती है एक परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में जाती है, उसके साथ में दो दो परिवार दो दो कुटुंब जुड़े होते हैं, और वो एक ही लड़का तो एक ही परिवार का एक ही कुटुंब को लेके चलता है, एक ही कुटुंब का नाम रोशन करता है, पर कन्या जो होती है अपने माँ बाप और अपने ससुराल पक्ष दो दो कुटुंब का कल्याण करती है और दो दो कुटुंब को लेके चलती है। इसलिए कन्याओं की भागीदारी या कन्याओं को शिक्षित होना तो बहुत ही अति आवश्यक है।
क्या ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई धारणाएं हैं? क्या उन्हें माध्यमिक लेवल की पढ़ाई करने के बाद उन्हें स्कूल छोड़नी पड़ती है और अनेक ऐसी कठिनाइयों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि उनकी पढ़ाई भी, बेटियों की पढ़ाई भी अच्छे से हो सके?
हमारा देश एक निर्धन देश था, धीरे धीरे हम आर्थिक उन्नति की ओर जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र निश्चित रूप से हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो पुराने पुरानी पीढ़ी है, वो अशिक्षित होने के कारण लड़कियों को केवल चूल्हा चौके तक सीमित समझती है, पर आज स्थिति वैसी नहीं है। आज सुरक्षा क्षेत्र को से लेकर सारे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी हो रही है, उनको प्राथमिकता के साथ में उनको अवसर दिया जा रहा है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के भी माँ बाप को ये समझना चाहिए, और मेरा भी एक निवेदन है कि हम लोग जिस तरह से आज एक महिलाओं का पूजन 9 दिन कर रहे हैं, इसी तरह से महिलाओं का सम्मान करते हुए महिलाओं को एक अग्रिम पंक्ति में हमने लाने का सब लोगों ने प्रयास करना चाहिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे शहरी क्षेत्र का हो, चाहे पिछड़े लोग हो, और सारी सरकार सारे सामाजिक संगठन भी ये प्रयास कर रही है कि किस तरह से हम बच्चों को आगे ला सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के निश्चित रूप से माँ बाप कम पढ़े लिखे होने के कारण अपनी बच्चियों की पढ़ाई को लेके ज्यादा गंभीर नहीं होते, पर सब लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी ये प्रयास करना चाहिए, सभी माता पिता ने, कि अपनी बच्ची को लड़के के बराबर का भागीदारी बनाए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाए, उसी में हम सब लोगों का कल्याण है।
जी, क्या गरीबी हटाने, शिशु मृत्यु, माता की मृत्यु, पोषण आहार और उपलब्ध कराने जैसी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, क्या इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
इसमें और अच्छा सुधार करने की आवश्यकता है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र को, पिछड़े वर्ग को, या एक फॉर्मुलिटी के हिसाब से न करें, बल्कि एक सुदृढ़ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, इस पहलू को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उनको अच्छे पोषण आहार की व्यवस्था करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग एक निम्न दर्जे का राशन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में वितरण होता है, इस तरह का न हो और सरकार इस ओर ध्यान हो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, हमारा जो आदिवासी बंधु, हमारे जो किसान और मजदूर है, उनको अच्छा सा अच्छा भोजन उपलब्ध हो और उनके बच्चों को भी अच्छा भोजन उपलब्ध होगा तो वो लोग अच्छा शिक्षण और अच्छी व्यवस्था कर पाएंगे और देश भी एक स्वस्थ देश होगा।
क्या आज के परिवेश में दहेज उत्पीड़न जैसी घटनाओं से बेटियों बेटियां प्रभावित होती है और दोनों परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी जो परंपराएं बनी हुई हैं, इससे इसको तोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए ताकि दोनों परिवार
इसलिए महिलाओं को भी जागरूक होने की जरूरत है, महिलाओं की भी एक सजगता होनी चाहिए, लड़कियों को अपने अधिकार समझने चाहिए। भारत सरकार ने बहुत सारे जो कानून है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। उन महिला कानूनों के सुरक्षा का सहारा लेके महिलाओं ने एक सजग होके अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए और जो बहनें नहीं समझ पाती उनमें भी एक जागरूकता फैलाने का काम एक समाज की जो महिला है, जो जागृत महिला है, उन जागृत महिलाओं ने एक बीड़ा उठाना चाहिए और बहुत सारे संगठन महिला सुरक्षा को लेके काम करता है, शासन भी इस ओर बहुत सारे काम कर रहा है, इसका सभी महिलाओं ने एक उसका फायदा उठाना चाहिए।
जी, क्या भारत की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हो या भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई हो या प्रथम आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हो या फिर भारत की अभी ओलंपिक में कई बेटियों ने स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक जीते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए आम ग्रामीण क्षेत्रों के एवं शहरी क्षेत्रों की बच्चियों को कैसे देखना चाहिए और इसको पढ़ाई की ओर किस तरह मोड़ा जा सकता है?
हम सब लोगों को विदित है श्रीमती फुले जी ने जिस तरह से इन महिलाओं के पहले, इंदिरा जी के पहले भी जिस तरह से एक महिलाओं ने महिला शिक्षण और अछूत और बहुत सारी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जो फुले परिवार ने एक मुहिम चलाई थी वो एक महिलाओं के द्वारा चलाई गई थी। झांसी की रानी हो या शिवाजी महाराज जी की माता हो, ऐसी बहुत सारी महिला इस देश में इसके पूर्व भी हुई है जिन्होंने आगे होके अपनी लड़ाई लड़ी है और इस देश के पुरुषों के आगे पुरुषों के साथ में रह के अन्याय के खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। इन सब सारी चीजों की प्रेरणा आज की महिलाओं ने लेना चाहिए। आज ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो, हर जगह आज शिक्षा पहुंची है और उन शिक्षा का बहुत सारे सुविधाएं सरकार द्वारा की जाती है, उसका लाभ ग्रामीणों ने लेना चाहिए और ग्रामीण महिलाओं ने भी इसका फायदा लेना चाहिए।
जी, तो ये थे संदीप जी बकने जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से बेटियों की पढ़ाई, सबकी भलाई, इस विषय पर जानकारी साझा की। संदीप जी, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद
छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश।